Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. मीठे प्यारे बाबा की रिवाइज मुरली हम सबने सुनी और बाबा ने मुरली में खास हम सबका ध्यान खींचा। मनुष्य प्रश्नों से घिरा रहता है। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद भी मन में कई कई प्रश्न उठ जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो प्रश्न उठाएगा वो प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा। तो अब हमको कैसा बनना है? हर्षित मुख बनना है, प्रसन्न चित्त नहीं बनना, हर्षित चित्त बनना है। एक बाप से सुने और उसी को गुने। जैसे दिखाते हैं कि विष्णु जी शेष सैया पे लेटे हैं, मुस्कुरा रही हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं कि आप इतने हर्षित क्यों हैं? शायद मैं पांव दबा रही हूं इसलिए आपको खुशी हो रही है। लेकिन श्री नारायण कहते हैं कि नहीं, मैं गीता ज्ञान का स्मरण कर करके हर्षित हो रहा हूं। तो जितना बाबा के दिए ज्ञान का मनन चिंतन अंदर ही अंदर विमर्श करेंगे उतने हर्षित रहेंगे। बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे जब मैं शब्द याद आए, मैं शब्द बोलो तो याद आए मैं कौन, अर्थात मैं आत्मा, और जब मेरा याद आए तो मेरा बाबा। तो यही गीता ज्ञान का सार है, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि फुल स्टॉप अगर लगाना है तो उसके लिए आपके पास फुल स्टॉक चाहिए। स्टॉक किस चीज का चाहिए? ज्ञान का फुल स्टॉक चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान भरपूर होता है तो किस बात को किस चिंतन से मैनेज करना है वो तुरंत आ जाता है। जैसे होशियार डॉक्टर होते हैं तो पेशेंट को देखते ही दवा याद आ जाती है। होशियार वकील होता है तो सामने मुवक्किल को देखते ही कौन सी पॉइंट बोलनी है वो याद आ जाती है। तो ऐसे ही जिसके पास ज्ञान का फुल स्टॉक होता है उसको मौके पे बात याद आ जाती है और फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन जिसको मौके पे ज्ञान की पॉइंट याद ही नहीं आई तो वो क्यों क्या कैसे में उलझ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाने के लिए फुल स्टॉक रखो। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का भी गहरा राज समझाया है और उसमें बाबा ने तीन बातें बताई हैं। पहली बात है ड्रामा एक्यूरेट है, दूसरी बात है ड्रामा कल्याणकारी है, और तीसरी बात है ड्रामा न्यायकारी है। और संगम युग तो है ही विशेष में विशेष कल्याणकारी। तो अगर ये तीनों बातें हमें याद रहें कि रचयिता ने इस ड्रामा को एक्यूरेट रचा है, न्याय के साथ रचा है, कल्याण के साथ रचा है। कई बार कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हमें अकल्याण नजर आता है, लेकिन वो छोटा सा दिखने में लगता है उसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण होता है। जैसे किसी को कांटा लगा तो मन में आएगा मेरे को कांटा क्यों लगा, लेकिन वास्तव में तो सूली लगनी थी और वो सूली कांटे में परिवर्तित होकर के बहुत छोटी हो गई, तो वो कल्याणकारी तो हो गई। कई बार हमको लगता है कि ये अच्छा आदमी है इसे दुख मिल रहा है और ये बुरा आदमी है ये बहुत सुखी है। लेकिन जैसे कोई नाटक होता है ना, उसकी कई धारा होती हैं, धारावाहिक होता है। तो ये सृष्टि नाटक की भी 84 एपिसोड है। अब सही न्याय तो तब हो जब हम 84 के 84 देखें, लेकिन हमारा जीवन इतना छोटा है कि हम अपना भी याद नहीं रख पाते, दूसरे का भी पूरा जीवन नहीं देख पाते। अब जैसे मान लीजिए महाभारत में एक इंसिडेंट है कि भीम ने गदा से दुर्योधन के ऊपर प्रहार किया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब कोई इतना ही नाटक देखे तो मन में क्या सोचेगा, बेचारे दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ और भीम ने उसके साथ अन्याय किया। लेकिन जो पूरा महाभारत देखेगा उसको समझ में आएगा कि दुर्योधन के साथ अन्याय नहीं हुआ, वास्तव में न्याय का यही तकाजा था। तो हम केवल एक जन्म को देखते हैं। आज जो बुरे काम करके सुख भोग रहा है उसके साथ कल क्या होने वाला, उसे देखने के लिए हम बचते नहीं। और आज जो सुख भोग रहा है कल उसने कितने अंधेरे देखे हैं वो भी हमें याद नहीं। इसलिए ड्रामा एक्यूरेट है क्योंकि इसको बनाने वाला एक्यूरेट है। ड्रामा न्यायकारी है क्योंकि भगवान भी न्यायकारी है, तो उसकी रचना में अन्याय कैसे हो सकता है। अगर ये बात हम याद रखें तो तुरंत फुल स्टॉप लगेगा, जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी बात को छोटा करो, छोटी बात को बड़ा मत करो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे किसी बात रूपी गुड़िया को लेते हैं, फिर उस बात रूपी गुड़िया का श्रृंगार करते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसको बड़ा 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 बनाते जाते हैं। फिर जब थक जाते हैं तो उसको, जैसे लोग मूर्ति को पानी में बहाते हैं, फिर बाबा के पास आते हैं, बाबा रूपी ज्ञान सागर में लास्ट में उसको बहाते। तो बाबा पूछते हैं पहले इसको इतना बड़ा बनाया क्यों, इसका इतना श्रृंगार क्यों किया, इसको इतने जेवर गहने क्यों पहनाए। जब ये बात आई उसी समय ना इसको ज्ञान सागर में बहा देते। तो अगर कोई ऐसी बात जीवन में आ जाती है तो सोच सोच करके मसाला लगा लगा करके उसको विस्तार का रूप मत दो। बात आई और बाबा को समर्पित की तो जैसे पानी पर लकीर की तरह से आई और चली गई, लेकिन सोचेंगे तो वो बड़ी होती जाएगी और फिर वो बड़ी बात हमको ही लपेट लेगी। इसलिए बाबा ने कहा पर्वत को राई बनाना सीखो, राई को पर्वत मत बनाओ। फिर बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाने के लिए नथिंग न्यू की स्मृति रखो। बाबा मुरली में कहते हैं कि ये नथिंग न्यू की बात कोई सन्यासी महात्मा गुरु कोई नहीं सुना सकता, ये केवल बाबा सुनाता है। केवल बाबा के पास ये नॉलेज है कि 5000 साल का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अब अगर हूबहू रिपीट होता है तो बनी बनाई बन रही, कल्प पहले भी तो बनी थी और वैसी की वैसी अब बनेगी। बनी बनाई बन रही अर्थात अनहोनी होती नहीं है और होनी होकर के रहती है। इसलिए जो बातें हो जाती हैं उनको ये सोच के फुल स्टॉप लगाएं कि ये कल्प पहले भी हुई थी और अब भी हो गई। बाप दादा ने अपनी स्थिति अचल अडोल रखी क्योंकि बाबा को मालूम है जो जो कल्प पहले घटनाएं घटी थी वो तो इस कल्प में भी घटेंगी। तो ये पॉइंट भी बहुत सुंदर है बिंदु लगाने के लिए कि अब तक जो बीता वो रील में लिपट गया, आगे के लिए हम अच्छे से अच्छा करें, लेकिन जो बीत गया उसके बारे में क्यों क्या प्रश्न ना उठाएं। कई बार मन में प्रश्न दूसरों के पार्ट को देख करके चलते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे आप अपने को देखो, आपके ऊपर केवल अपनी जिम्मेवारी है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये जिम्मेवारी तो आपकी है ही नहीं। एक वो घटना आपने सुनी होगी कि एक महिला थी, वो छत पे बैठ के पड़ोसी के सूखते हुए कपड़े देखा करती थी, बीच में कांच की दीवार थी, तो रोज अपने बच्चे को कहती थी बेटा ये तुम्हारी आंटी ना कपड़े साफ नहीं धोती, इसके कपड़े मैले मैले पीले पीले, रोज कहती थी। एक दिन बैठी तो कपड़े बड़े साफ नजर आने लगे, तो कहती है देख बेटा लगता है तेरी आंटी ने साबुन बदल लिया, आज कपड़े चमक रहे हैं। तो बच्चा कहता है मम्मी ये जो हमारी कांच की दीवार है ना, मैंने इसके कांच साफ कर दिए थे, तो मैले थे कांच लेकिन लग क्या रहा था कपड़े मैले। तो हम अपनी दीवार को तो साफ नहीं करते लेकिन दूसरों के कपड़ों का मैल देखते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों को देखने में बहुत समय लगाएगा तो उसके पास खुद को देखने के लिए समय बचेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तू अपने को देख, कहती हैं तू अपने को देख तुझे और से क्या, और तू अपनी गठरी संभाल तुझे चोर से क्या। अगर आप अपनी गठरी संभाल लेंगे तो चोर आपका क्या बिगाड़ेगा, और अगर आप अपने को सुधार लेंगे तो दूसरा आपका क्या बिगाड़ेगा। रूप को ना देख करके रूह को देखने का अभ्यास करें। संकल्प कब चलते हैं बहुत, जब व्यक्ति देह को देखता है, देह की जाति कुल धर्म भाषा रंग पद, तो उसके विचार चलते हैं। लेकिन ये तो ड्रामा का रोल है और रोल हमेशा टेम्परेरी होता है, रोल सदाकाल नहीं चलता, लेकिन रूह अविनाशी है। इसलिए विनाशी चीजों को देख करके हम अपनी स्थिति को डावाडोल ना करें। इस पार्ट को निभाने वाली चेतना को आत्मा को बार बार देखें, उसका चिंतन करें। इस शरीर में अमूल्य हीरा आत्मा है, इस शरीर को गति देने वाली आत्मा है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो शरीर गतिहीन हो जाता है। पिछले दिनों अटल बिहारी वाजपेयी ने शरीर छोड़ा तो सब एक दो को सुना रहे थे वाजपेयी जी ने शरीर छोड़ा। सवाल ये है कि शरीर को पकड़ किसने रखा था, पकड़ने वाला कौन था। इसका मतलब आत्मा शरीर को पकड़े रखती है और जैसे ही वो चली जाती है ये छूट जाता है और धराशायी हो जाता है। तो वास्तव में पकड़ने वाली, शरीर को चलाने वाली, शरीर का संचालन करने वाली, इस शरीर को सुंदरता देने वाली आत्मा ही। शरीर तो अपने आप में पांच तत्वों से बना हुआ जड़ है, ये ना चल सकता ना हिल सकता ना सोच सकता ना बोल सकता। तो इसमें जो चेतना है वही देखने योग्य है, वही वर्णन करने योग्य है, वही चिंतन करने योग्य है। तो हम अगर रूह को देखेंगे तो संकल्प नहीं चलेंगे। विचारों की गति को धीमा बनाएं और विचारों को महान बनाएं। आज भी बाबा ने कहा, आप बाबा के साथ, बाबा के कर्तव्य में हाथ बटाने वाली बहुत महान आत्माएं हो। तो हम महान क्यों हैं? क्योंकि हमारे विचार महान है। कहते हैं कोई व्यक्ति बड़ा इसलिए नहीं बनता कि उसका कद बड़ा है। वैसे तो साया भी व्यक्ति से बड़ा होता है, लेकिन व्यक्ति बड़ा इसलिए है कि उसके विचार ऊंचे हैं, महान हैं, बड़े हैं। और महान विचार कौन से विचार होते हैं? जो परोपकार के विचार हैं, दया के, सहानुभूति के, दातापन के, सरलता के, माफ करने के, निस्वार्थ भाव के, शुद्ध स्नेह के, शांति के, प्रेम के, ये जो विचार हैं ये महान विचार हैं। और ये विचार हमेशा धीमी गति से चलते हैं। इसके विपरीत जो छोटे विचार हैं, तुच्छ विचार हैं, वो विचार बहुत तेज गति से चलते हैं। क्रोध के विचार, लोभ के विचार, अहंकार के विचार, ईर्ष्या के विचार, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। एक मिनट में 35, 40, 45 इस गति से भी वो विचार चलते हैं। और जो शुद्ध विचार हैं, महान विचार हैं, उनकी गति एक मिनट में 20, 15 ऐसे रहती है। तो अगर हम ऊंचे विचारों में रमण करेंगे, कोई न कोई स्वमान में टिके रहेंगे। बाबा ने हम बच्चों को कितने स्वमान दिए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, स्वमान की सीट पर बैठे रहना ही महान आत्मा बनना है। और जैसे ही स्वमान की सीट से आप फिसल जाते हैं तो आपकी महानता भी फिसल जाती। तो बाबा ने जो स्वमान दिए, उन स्वमानों में रमण करना, उनका अनुभव करना और उनकी शक्ति अपने आप में जमा करना, तो इससे हम महान आत्मा बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और हमारे विचार भी धीमी गति से चलेंगे। जब हम स्वयं आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो सामने वाले की भी आत्मा ही दिखाई देती है। आत्मा को देखना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। जैसे बहुत मिट्टी का बड़ा ढेर हो और उसमें कोई छिपे हुए हीरे को देख ले तो कहेंगे भाई तुम्हारी तो आंख बहुत तेज है। तो इस चमड़ी के आवरण में छिपी हुई आत्मा को देखना ये भी इस बात का प्रतीक है कि हमारी आंतरिक दृष्टि बहुत तीव्र है, बहुत स्वच्छ है। और बाबा ने ये भी कहा था, जब आप सामने वाले को आत्मिक दृष्टि से देखते हो तो उसको बल मिलता है। तो चलते फिरते सफर में आते जाते सारा दिन हमें व्यक्ति दिखाई देते हैं। हम भीतर के नेत्र से सामने वाले को भी भ्रुकुटी में विराजमान हीरे के रूप में देखें, मणि के रूप में देखें, एक शक्ति के रूप में देखें, शिव बाबा की अति प्रिय आत्मा के रूप में देखें, आत्मा भाई के रूप में देखें। आज भी बाबा ने कहा, जब आप सामने वाले को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखते हो तो उसको शांति का बल मिलता है, उसकी एक तरह से मनसा सेवा हो जाती है। तो ये भी फुल स्टॉप लगाने में मददगार पॉइंट है। फिर बाबा ने कहा, सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना बनी रहे। आज भी इसके ऊपर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि जब आप किसी के लिए निरंतर शुभ भावना शुभ कामना करते हैं तो उसका शुभ फल ना निकले ये हो नहीं सकता, उसका शुभ फल अवश्य निकलता है। तो अगर हम शुभ भावना के बीज बोएंगे तो फल भी तो शुभ भावना के ही निकलेंगे ना, जैसा बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। आज अगर हमें अनेक लोगों की शुभकामनाएं मिल रही हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमने शुभकामना के बीज बोए थे, वो उगाए। और अगर हमारे जीवन में अनेकों की दुर्भावनाएं हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमने दुर्भावना के बीज बोए थे, वो उगाए। इसलिए प्यारे बाबा के श्रीमत प्रमाण, कोई हमारे लिए कुछ भी सोचे लेकिन हम उसका भला सोचें, क्योंकि उसका सोचा हुआ उसको मिलेगा और हमारा सोचा हुआ हमें मिलेगा। कबीर दास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, जो तो को काटा बुवे ताही बोवे तू फूल। जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है तुम उसके रास्ते में फूल बो। तो को फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। तुम्हें तो फूल के बदले में फूल मिलेगा लेकिन उसको कांटे के बदले त्रिशूल मिलने वाला है। इसलिए किसी ने हमसे कैसा भी व्यवहार किया हम उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे। दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं। पहले लोग वो हैं जो बिना ही बात दुर्भावना रखते हैं, उनको कहेंगे आसुरी वृत्ति के लोग। दूसरे लोग वो हैं जो कहते हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचेगा हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे, जैसे को तैसा, वो है मानवीय वृत्ति के लोग। लेकिन तीसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कोई हमारे लिए कैसा भी सोचे लेकिन हम तो भला ही सोचेंगे, वो होते हैं दैवी वृत्ति के लोग। तो हम सब कौन है? दैवी वृत्ति वाले। अनुमान की बीमारी पर चिंतन पर दर्शन पर मत से मुक्त रहकर अंतर्मुखता को बढ़ाना है। बाबा ने एक मुरली चलाई थी जिसमें कहा था बच्चे तीन पर काटो और एक पर लगाओ। तो कौन कौन से तीन पर काटने हैं? पर चिंतन वाला पर, पर दर्शन वाला पर और पर मत वाला पर। पर चिंतन नहीं करना, पर दर्शन नहीं करना, पर मत में नहीं आना और एक पर लगाओ, वो है परोपकार। रहीम दास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, यो रहीम सुख होता है उपकारी के संग, बांटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो परोपकारी के संग रहता है तो उसको भी परोपकार का रंग लग जाता है। जैसे कोई मेहंदी बांटता है तो उसके हाथ को मेहंदी का रंग लग जाता है। तो हमें तो बहुत परोपकारी का संग मिला, हमारा बाबा परम परोपकारी है, तो उसके संग का रंग हमें लग गया है और बाबा ने हमको भी परोपकारी बना दिया है। और ऐसी परोपकारी आत्मा कभी भी क्यों क्या में नहीं जाएगी। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करके भी वो भुला देगी क्योंकि उसे अच्छे का फल तो मिलना ही है। ज्ञान गुण शक्तियों का फुल स्टॉक रहे तो सहज ही फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बाबा ने मुरली में कहा कि आप बच्चे एक जन्म नहीं 21 जन्म नहीं लेकिन पूरे कल्प में रिचेस्ट। तो बाबा ने ये भी कहा कि ये आपकी रिचनेस ज्ञान गुण शक्तियों के कारण, ये ऐसा धन है जिसे राजा नहीं ले सकता, चोर नहीं लूट सकता, आपसे कोई ठगी नहीं कर सकता, तो ये ज्ञान गुण शक्तियों का धन अगर हमारे पास फुल है तो भी हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ये तीनों चीजें ऐसी हैं, चाहे आप विदेश चले जाएं तो बिना टिकट आपके साथ ट्रैवलिंग करती हैं। इसके बारे में भी संस्कृत में एक सुभाषित है जिसमें कहा गया है, सब देशे पूज्यन्ते राजा, विद्वान तु सर्वत्र पूज्यन्ते। धन वाला व्यक्ति केवल अपनी प्रजा में पूजा जाता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान गुण शक्तियां हैं उसकी पूजा तो सर्वत्र होती है, सीमाओं के परे भी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इनका फुल स्टॉक रखो, एकांत में बैठ करके देखो कि मेरे में ज्ञान का फुल स्टॉक है। बाबा जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं वो याद रहती हैं, उनका मनन चलता है, बार बार उनका स्मरण करेंगे तब वो याद रहेंगे। जैसे मोबाइल का जो नंबर बार बार स्मृति में आता है वो याद हो जाता है, तो ऐसी ज्ञान की जो बात मन में बार बार दोहराई जाएगी वो हमको याद हो जाएगी। दूसरे हैं गुण, गुण जो रोज व्यवहार में आते हैं, नम्रता भी एक गुण है, शांति भी एक गुण है, प्रेम भी एक गुण है, पवित्रता भी गुण है। तो ये गुण जितने हमारे पास होंगे हम उतने ही धनवान होंगे, क्योंकि धन भी इन गुणों के कारण आकर्षित होता है, और जिसके पास गुण नहीं है उससे धन भी दूर चला जाता है। जब हम 16 क्लास संपन्न सर्वगुण संपन्न थे, 16 क्लास संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, तो प्रकृति की सारी संपदा हमारी तरफ आकर्षित हो गई, और जैसे जैसे गुण कम हुए प्रकृति की संपदा हमारे हाथों से छूटती गई। तो धन के बजाय हम इन गुणों को इकट्ठा करें, धन इनके पीछे अपने आप आ जाएगा, मान सम्मान भी आ जाएगा, निरोगी काया भी आ जाएगी, सुख सुविधाएं सब कुछ इनके साथ अपने आप आकर्षित होके आएगा। बाबा मेरे साथ है, अपने सारे बोझ बाबा को दे दें, बाबा को यूज करें। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्ची संगम युग में मैं आपके लिए आया हूं तो मुझे यूज तो करो, मेरे से फायदा तो उठाओ, मेरे से काम तो लो, अर्थात चलते फिरते मुझे साथ रखो, हर कार्य में मुझे साथ रखो, घर से बाहर निकलते हो तो साथ लेके जाओ, वापस लौटते हो तो बाबा को बताओ बाबा मैं आ गया हूँ सफलता के साथ, अर्थात संपूर्ण दिनचर्या में बाबा को अपने साथ रखो। तो ये हम सबका निजी अनुभव है कि जब हम बाबा को साथ रखते हैं तो ऐसे लगता है कि हम चल नहीं रही हैं, उड़ रही हैं, ऐसे लगता है कि हम काम कर नहीं रही हैं, लेकिन बाबा हमें सारे काम करके दे रहा है। हमें ऐसे लगता है कि हम जीवन का आनंद ले रहे हैं, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। बाबा कहता है मैं सारे बोझों को हरने वाला हूं। तो जो बाबा को साथ रखता है वहां बोझ हो ही नहीं सकता। जब बाबा छूट जाता है तो बोझ आ जाते हैं, और जब बाबा आ जाता है तो बोझ चले जाते हैं। तो निरंतर हम चेक करें कि क्या बाबा मेरे साथ है, क्या मैंने बाबा को साथ में खिलाया, क्या मैंने बाबा को साथ में सुलाया, क्या मैंने बाबा को साथ में सफर कराया। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप अकेले हो जाते हो ना तो माया भी चांस लेती है, दुनिया में भी किसी को पीटना हो तो पहले उसे अकेले दूर ले जाते हैं फिर पिटाई करते हैं, चोरी करनी हो तो भी अकेले में करते हैं। तो माया भी हमसे जो भी कुछ करती है हमें अकेला देख के करती है। अगर हजार भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है तो माया हमारा कुछ नहीं कर सकती। आज बाबा ने कहा दुनिया में तो सब लोग भय में है, बड़े से बड़ा जो राजा है वो भी भय में है, तो प्रजा का क्या होगा। और अंगरक्षक रखते हैं, लेकिन जिसका अंगरक्षक स्वयं भगवान हो उसे किस बात का भय। तो जब हम बाबा को साथ रखते हैं तो बाबा हमारा साथी, सहारा, अंगरक्षक सब कुछ बन जाता है, छत्र छाया, मार्गदर्शक। बाबा साथ है तो मार्ग नहीं भूल सकते, बाबा साथ है तो उलझन नहीं आ सकती, बाबा साथ है तो उमंग कम नहीं हो सकती। इसलिए बाबा का साथ एक संजीवनी बूटी है, एक चमत्कारिक शक्ति के रूप में हमारे साथ है। तो हम बाबा के साथ का फायदा उठाएं, संगम युग में निरंतर आनंदित रहें बाबा के साथ से। आत्मविश्वास के साथ सत्यता की शक्ति को साथ रखें। सत्यता एक महान शक्ति है और यादगार ग्रंथों में दिखाया है कि सत्यता की ही जीत होती। भारत का तो जो एम्बलम है उसमें भी लिखा है सत्यमेव जयते, केवल सत्य की ही जीत होती। झूठ की नाव हिलती नहीं, डुलती नहीं, सीधी डूबती है, और सच की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं। इसलिए हमें सत्य पर अडिग रहना है आत्मविश्वास के साथ। लेकिन सत्य है क्या? कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि सबसे बड़ा गुण है पवित्र रहना। दुनिया में तो कहते हैं भाई झूठ नहीं बोलो, लेकिन झूठ तो फिर भी बोली जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है पवित्र रहना। तो वास्तव में पवित्रता का आधार भी सत्यता है, लेकिन कौन सी सत्यता? जिस सत्यता के आए बिना दुनिया में सच्चाई आ ही नहीं सकती। उसके लिए बाबा ने मुरली में कहा था सबसे पहला सत्य है अपने सत्य स्वरूप में टिकना, अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं ज्योति स्वरूप। इस सत्य में टिकना ही पहला सत्य है। अगर कोई सत्य में टिकता नहीं है और वैसे सच बोलता है तो उस सच से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक वो सत्य स्वरूप में टिकेगा नहीं तब तक उसके संस्कार सत्यता के बनेंगे नहीं, और वो सत्य पिता से कनेक्ट होगा नहीं, और उसमें सत्य की शक्ति आएगी नहीं। इसलिए हम इस पहले सत्य के ऊपर अडिग रहे कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, ये पहला सत्य। इसके साथ ही बाकी सत्य जीवन में आते हैं। करण करावन हार बाबा है, अपनी सेवाएं बाबा को समर्पित करें। बाबा ने मुरली में कहा बच्चे ब्राह्मण जीवन में जितने भी विघ्न है उनका जो दरवाजा है वो मैपन है, और मैपन को खत्म करने का तरीका है करण करावन हार बाबा है, मैं केवल निमित्त हूं। एक मुरली में बाबा ने कहा था निमित्त भाव सर्व गुणों का जनक है। बाबा ने कहा बच्चे जो अंतिम शिक्षा है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनो, उसको जीवन में धारण करने का आधार भी निमित्त भाव है। बाबा ने कहा बच्चे आप जो भी कुछ करते हो या कोई भी करता है ब्राह्मण बच्चा, तो वो सेवा तो बाबा की है, किसी की निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं। मेरी दौलत उसकी दौलत सेवा सब बाबा की है। उसने की तो भी बाबा का नाम रोशन होगा, मैंने की तो भी बाबा का नाम रोशन होगा। अगर ये भावना आती है कि ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा क्यों करे, बाबा ने कहा ये भी मैपन है। बाबा की सेवा होनी चाहिए, निर्विघ्न सेवा होनी चाहिए, हमारे अंदर ये भावना रहे। तो ये भावना तब आएगी जब हमको ये रहेगा कि बीज रूप एक बाबा है, करने वाला कराने वाला एक बाबा है और हम सब के सब कठपुतलियां हैं जो उसके इशारे पे नाच रही। इसलिए हमारे में से कोई भी मालिक नहीं है, मालिक तो केवल एक बाबा ही है, हम सब सेवक हैं। और कहते हैं कि जो सेवक होके रहता है वो हमेशा निश्चिंत होता है, चिंता आती तब जब हम मालिक बन जाते। तो मालिक बाबा को बनाए, जैसे रामायण में दिखाते हैं कि जब श्री राम जी वनवास चले गए तो भरत ने गद्दी पर श्री राम की खड़ाऊ रख दी और खुद सेवक बन करके अयोध्या को संभालने लगा। राजा नहीं बना, राजा के सुख भी नहीं भोगे, सरयू नदी के किनारे भगवा कपड़े पहनकर एक तपस्वी सा जीवन व्यतीत किया, कंदमूल फल खाए। तो परिणाम ये हुआ कि 14 साल अयोध्या का राज्य निर्विघ्न चला, कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, कोई आक्रमण नहीं, प्रजा में कोई असंतोष नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी अपनी जिम्मेवारियों की, जो आपकी जो जिम्मेवारियां हैं वहां शिव बाबा की खड़ाऊ रख दो, मालिक शिव बाबा को बना दो। अगर आप घर के मालिक हैं तो समझो कि मालिक शिव बाबा हैं और मैं इस घर का सेवक हूं। अगर आप सेवा केंद्र पर हैं तो समझिए सेवा केंद्र का मालिक बाबा है, खड़ाऊ रखी हुई है और मैं भरत की तरह से सेवक हूं। तो जब हम निमित्त बन करके एक सेवा करेंगे, बाबा को करण करावन हार समझेंगे और अपनी सेवाएं बाबा को समर्पित करते जाएंगे तो फुल स्टॉप सहज लग जाएगा। एकांत में बैठ अपने आप से और बाबा से बातें करके आत्मा में बल भरना है। एकांत अर्थात एक के अंत में जाना। भक्ति में ऋषि मुनियों ने कहा नेति नेति, अर्थात परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता। लेकिन संगम युग में बाबा ने अपना पार बता दिया, अपना अंत हमें दे दिया, अब हमें उस अंत में डूबना है, उस एक में मन को समाहित करना है। जैसे पतंगा लाइट के चारों ओर मंडराता है और फिर उसी पर भस्म हो जाता है, तो हमारा मन उस क्षमा के चारों ओर मंडराता रहे। एकांत में बैठ करके हम अपने को भी देखें, अपने पिता को भी देखें, उसके साथ अपने गुणों का मिलान करें, उसके साथ समानता में कितनी दूरी है, कितनी देरी है, उसका आकलन करें, उसके समान बनने की संकल्पों में दृढ़ता लाएं। ऐसे जब एकांत में बैठ के अपने पे मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे उसके समान बनते जाएंगे, उसके समीप होते जाएंगे और इससे बहुत सुख बहुत आनंद मिलेगा, आत्मा बहुत बलवान बन जाएगी। याद रहे बात बड़ी या बाप बड़ा, एक मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं और जहाँ बाप है वहाँ बात नहीं। दादी जानकी भी अपना अनुभव सुनाती हैं कि एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि सुना है आप भगवान से बात करती हो, तो दादी ने कहा हाँ बात करती हूँ। तो बोला हमें भी सिखा दो, तो बोला दुनिया से बातें करना बंद कर दो तो भगवान से बातें हो जाएंगी। तो जो नीचे की संसार की बातों में डूबा रहता है उसका ऊपर का कनेक्शन कट हो जाता है और जो नीचे का कनेक्शन कट कर देता है उसका ऊपर का कनेक्शन चालू हो जाता है। तो कोई भी बात आए तो ये याद रखना है कि ये बात तो बहुत छोटी है लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा बाप है। बात को कहो कि ये बात तुम तो बहुत छोटी हो लेकिन मेरा बाप तो बहुत बड़ा है और वो मेरे साथ, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बताते हैं कि अब्राहम लिंकन एक बार प्रार्थना, एक बार उनके ऊपर कोई समस्या आई तो उनका एक मित्र उनको धीरज देने आया और उस मित्र ने भगवान की तरफ ऊपर की तरफ मुंह करके कहा, हे प्रभु मेरा मित्र लिंकन बहुत अच्छा है, इसके ऊपर एक मुसीबत आई है, इस मुसीबत के समय आप इसको साथ देना। तो जब वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था तो लिंकन ने बीच में ही उसको रोक दिया, तुम्हारी प्रार्थना गलत है। उसने कहा गलत कैसी है, प्रार्थना तो ऐसी ही की जाती है। बोला बिल्कुल गलत है। तो बोला ठीक करके बताओ। तो बोला देखो भगवान तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हम उसका साथ छोड़ देते, इसलिए तुम ये प्रार्थना करो कि मुसीबत की इस घड़ी में मेरे मित्र लिंकन का ध्यान आपके सिवाय और कहीं भी ना जाए। तो होता क्या है कि जब बात आती है तो हमारा ध्यान बाबा से हटके बात में चला जाता और वहीं कमजोर हो जाते, लेकिन बात बेशक आए हमारा ध्यान अगर बाबा में रहेगा तो बात चली जाएगी और हम विजयी हो जाएंगे। अगली बाबा ने श्रीमत दी, तीन बिंदियों को याद करें, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो ये तीन बिंदी हम सबको लगानी आती हैं। बिंदी लगाना तो बहुत सरल है, छोटा बच्चा भी लगा सकता है, लेकिन तीनों लगाएंगे तब पास होंगे। कई भाई बहन एक बिंदी लगाते हैं और सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं निकला, फिर दो लगाते हैं फिर भी सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ, लेकिन तीन बिंदी चाहिए। अगर ड्रामा की बिंदी नहीं लगाई तो भी पास्ट में मन घूमता रहेगा, अगर आत्मा की बिंदी नहीं लगाई तो बाकी दो बिंदी लगेंगी ही नहीं, परमात्मा वाली बिंदी नहीं लगाई तो शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए तीन बिंदी लगाने की रोज प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा से मेरा गहरा नाता है और जो बीत गया वो क्या है उसको भूत कहते हैं, वो रील में लिपट गया। जैसे कोई काम पूरा करके हम रील में लपेट देते हैं और कोई रील को खोल के दोबारा उस चीज को निकाले तो कितना समय जाया जाएगा। तो जब हम बीती हुई बात को याद करते हैं तो हमारा बहुत समय व्यर्थ चला जाता है और वर्तमान की घड़ियों का हम पूरा फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए ड्रामा तो रील को लपेटता है पर मनुष्य उसे बार बार उघाड़ उघाड़ करके देखता है, खोल खोल के देखता है। तो जो चीज रील में लिपट गई उसे लिपट जाने दीजिए और आगे बढ़िए। अगर हम कोई ड्रामा देख रहे हो और सामने जो सीन हो उसको ना देख करके जो पीछे चला गया उसके बारे में सोचते रहे तो ड्रामा कैसे समझ में आएगा। इसलिए प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट का पूरा फायदा उठाएं, प्रेजेंट की एक एक घड़ी अमूल्य है, उसको अमूल्य बना करके अपने जीवन को अमूल्य बनाएं, क्योंकि जो समय को मोल देता है उसका अपना जीवन भी मूल्यवान बन जाता है। श्रेष्ठ स्मृति रहे कि अब घर चलना है और फिर राज्य में आना है। इससे पास्ट भूल जाएगा। अगर पुरानी दुनिया को भूलना है तो नई दुनिया को याद करो। अगर हम नई दुनिया को याद नहीं करेंगे तो मन पुरानी दुनिया में तो जाएगा ना। इसलिए एक बार मम्मा ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं इस दुनिया में रहती ही नहीं हूं, बच्चों का मुखड़ा देखना होता है तो नीचे आती हूं, नहीं तो मैं ऊपर रहती हूं या फिर अपनी स्वीट राजधानी में रहती हूं। तो इतनी श्रेष्ठ स्मृति के कारण मम्मा नंबर वन बन गई। इस रावण की दुनिया को उसने देखा ही नहीं। रामायण में दिखाते हैं कि जब सीता शोक वाटिका में थी तो वो कहती थी कि मेरा तन शोक वाटिका में है लेकिन मेरा मन इस पापी की दुनिया में है ही नहीं। मैं तो नित्य राम के संग विहार करती हूँ, मुझे तो केवल राम ही दिखाई देता और कुछ दिखाई नहीं देता। तो हम सब सीताओं का भी यही प्रण है, ये शरीर पुरानी दुनिया में है लेकिन हमारा मन नई दुनिया को, नए सतयुगी राज्य को देख रहा है, निहार रहा है, उस नई दुनिया के नजारे हमारे समक्ष। पहले घर जाएंगे उसके बाद राजधानी में आएंगे। तो घर भी हमको बहुत खींचता है। 5000 साल हो गए घर को छोड़े, याद आ रही है अपना वो मीठा घर, प्यारा घर, शांति का आलय। जाना हदे हैं, ना दीवार है, ना दरवाजे हैं, ना पार्टीशन है, कितना प्यारा घर है। उसका नाम लेते ही रोम रोम में शांति छा जाती है। तो उस अति मीठे प्यारे स्वीट होम में अब हमको जाना है, एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। वर्तमान में जिए और परमात्म प्राप्तियों को याद करें। बाबा की रिवाइज मुरली में भी बाबा ने कहा, याद के दो आधार है, एक संबंध और एक प्राप्ति। तो हमारे सारे संबंध बाबा के साथ है और सर्व प्राप्तियां भी बाबा से हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सबका दाता कौन? एक परमात्मा। तन, मन, धन, जन, चारों सुख का दाता कौन? एक परमात्मा। तो चाहे वर्तमान चाहे भविष्य, 5000 साल के कल्प में सर्व प्राप्तियों का दाता एक बाबा है। तो हम उस दाता को देखें, उससे होने वाली प्राप्ति को देखेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो बहुत आनंदित रहेंगे। एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक जेल में राष्ट्रपति का दौरा था। तो जेलर ने कैदियों को कहा, आज राष्ट्रपति आने वाला है, आपको उससे जो मांगना हो मांग लेना। तो पहली बैरक में गया तो एक कैदी खड़ा हो गया, राष्ट्रपति जी हमें दूध नहीं मिलता, हमें दूध चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है भाई, इनको दूध दिया करो, पाव पाव हर एक कैदी को। जेलर को कहा, ठीक है। अगली में गया, वहां भी एक कैदी खड़ा हो गया, एक डॉक्टर का राउंड होना चाहिए। ठीक है भाई, एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाओ, रोज इनकी बैरक में राउंड लगाए। फिर अगली बैरक में गया तो एक खड़ा हुआ और उसने कहा, राष्ट्रपति जी मुझे इस जेल से ही बाहर निकाल दो। तो बाकी जो लोग थे वो छोटी छोटी प्राप्ति में जेल में ही रहना चाहते थे, छोटी छोटी प्राप्ति से खुश थे पर रहना चाहते थे जेल में। तो दुनिया के लोग छोटी छोटी प्राप्ति से खुश होके इसी दुनिया में, कलयुग की दुनिया में ही रहना चाहते, लेकिन हमको बाबा से जो प्राप्ति हो रही है वो कितनी बड़ी, वो हमें कलयुग की दुनिया से निकाल करके पार ले जा रहा है और फिर अगला जन्म हमारा इस दुनिया में होना नहीं, अगला शरीर भी कंचन जैसा मिलने वाला है, अगले संबंध में रिश्तेदार नातेदार लक्ष्मी नारायण जैसे मिलने वाले हैं और राज्य भाग्य मिलने वाला है। इतनी भारी प्राप्ति को जब हम याद करेंगे तो पीछे की सब बातें भूल जाएंगी, फुल स्टॉप लग जाएगा, आगे ही आगे देखेंगे। मैं महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मन का मालिक हूँ, इस नशे में रहे। मैं महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मन का मालिक हूँ, इस नशे में रहे। अभी अभी बाबा ने जो मुरली चलाई थी उसमें कहा था कि मास्टर सर्वशक्तिवान वही हो सकता है जो अपने मन मन सहित तीनों सूक्ष्म इंद्रियों का मालिक है। स्वराज्य अधिकारी ही मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने हम बच्चों को कितनी बड़ी सीट दी है, संगम युग में भी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी। तो बार बार इस स्वमान को स्मरण में लाएं कि मैं अपनी सूक्ष्म इंद्रियों का भी और स्थूल इंद्रियों का भी मालिक हूँ, कोई भी इंद्री मुझे धोखा नहीं दे सकती, मेरे विरुद्ध नहीं जा सकती, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती, मेरी एक एक इंद्री मेरी सेवक है। और जैसे बाबा का भक्ति काल का हम अनुभव सुनते हैं, बाबा अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया करते थे, वैसे हम बच्चे भी अपनी इंद्रियों का दरबार लगाना सीखें। ओम शांति।
You may.